ओम शांति। जापान में एक सत्य घटना का वर्णन है। एक व्यक्ति था जिसका एक बहुत बड़ा घर था और वो अपने घर को गिराकर वहां एक नया घर बनाना चाहता था, और वहां की जो घर है और वहां की जो लकड़ियां होती है घरों की, उन लकड़ियों के बीच में थोड़ी जगह होती है, इस तरह के वहां घर होते हैं। तो जब घर को तोड़ा जा रहा था तो एक दीवार को जब उसने तोड़ा तो देखा वहां पर एक चिपकली है दीवार के अंदर, दो दीवार है लकड़ी की, एक चिपकली अटकी है वहां पर, और उसने देखा एक कील, एक नेल गड़ा हुआ है और वो चिपकली की पूछ उस कील से गड़ी हुई है। तो उनको आश्चर्य हुआ उस व्यक्ति को कि पहले तो थोड़ा लगा कि ये चिपकली अब तक कैसे है यहां पर, क्योंकि पता किया तो पता चला कि ये घर बने हुए 5 साल हुए हैं और वो जो चिपकली है और वो जो कील ठोकी गई थी 5 साल पहले ठोकी गई थी, तो 5 साल से उस बंद जगह में वो चिपकली वही है। आश्चर्य की बात यह है कि वो चिपकली जिंदा कैसे रही। हाँ, तो काम बंद कर दिया गया देखने के लिए कि ये जिंदा कैसे रही बंद जगह पर, और वो कील तो ठोके हुए 5 साल हो गए। तो देखा धीरे धीरे एक दूसरी चिपकली आ रही है और उसको भोजन खिला रही है 5 साल से, 5 साल से नियमित अपनी अनवरत सेवा दे रही है इस चिपकली को, कि जो कि ब्राह्मणी तो उस चिपकली को भोजन खिला रही है। तो उस व्यक्ति ने लिखा कि कितना बड़ा ये पाठ है मनुष्य के लिए, एक जो असहाय है, एक जो दुखी है, एक जो निरीह है, एक जो हेल्पलेस हैपलेस अभागा है, उस व्यक्ति के लिए उसके अपने साथी, अपने बंधु, अपने मित्र के द्वारा की गई ये सेवा कितनी महान, कितनी विशाल सेवा है, जबकि दूसरा कुछ नहीं कर सकता था उसी बंद जगह पर। और कितना नियमित उसने टिफिन पहुंचाया, ऐसा भोजन हमें भी पहुंचाना है विश्व को, और इस भोजन का नाम है सकाश, क्योंकि संसार भी ऐसा ही फंसा हुआ है, अंधकार विकारों के कील ठोके हुए हैं, न हिल सकते न डुल सकते, दुखी है, रोते हैं, तड़पते हैं, बिलकते हैं, कराहते हैं, परंतु कर कुछ नहीं सकते। उसी अंधकार घटाटोप अंधकार में फंसी हुई चेतना और पुकार रही है छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। तो हमें भोजन भी पहुंचाना है और वो जो है कील को भी निकालना है, ये हमारा काम है। और ये कार्य वाचा से नहीं होगा, केवल वाचा से नहीं हो सकता। वाचा से कितनों का कल्याण करोगे, 1,000 1,00,000 की सभा है, भाषण दे दिया, कितनों ने सुना, और जिन्होंने सुना भी असर कितना हुआ, अंदर कितना गया, धारणा कितनी हुई। एकमात्र ऐसी सेवा है, अनइंटरप्टेड सर्विस एक ही है, जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई लिमिट नहीं, जिसका कोई टाइम नहीं, जिसका तबीयत से कोई संबंध नहीं, जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं, जिसमें कोई कंपटीशन नहीं, ऐसी सेवा तो ये जो सेवा है सकाश की, सर्वोच्च सेवा है। सकाश कब देनी है, सकाश क्या है, कम से कम 10-12 प्रश्न है जिस पर सबको चिंतन करना है। सकाश क्या है, सकाश क्यों देनी है, सकाश के फायदे क्या है, सकाश देने का अधिकारी कौन है, कौन दे सकता है, क्वालिफिकेशन क्या है जो दे, सकाश कब देनी है, सकाश कैसे देनी है, सकाश किसको देनी है, सकाश देने के माध्यम क्या है, सकाश जिनको दे रहे हैं उनको मिल रही है कि नहीं, इसका प्रमाण क्या है, सकाश देने में मुश्किलातें क्या क्या है, डिफिकल्टीज क्या क्या है, इतने ये ढेर सारे प्रश्न है सकाश से संबंधित, परिभाषा से लेकर तो फायदे, विधि किनको देनी है ये एक दूसरा प्रश्न है, किन किन आत्माओं को देनी है, कहां कहां बैठ कर देनी है, किस किस स्थान पर बैठ कर देनी है, इतने कम से कम 10-15 प्रश्न है ये। तो कल संडे को जो अव्यक्त वाणी चली थी उसमें जो सेकंड पार्ट था उसकी डेट पता नहीं, क्योंकि डेट हो नहीं सकती, क्योंकि वो कोई एक अव्यक्त वाणी नहीं थी, वो जो 6 पैराग्राफ थे, 6 परिच्छेद, वो टुकड़े टुकड़े लिए गए थे, यहां वहां से, वहां वहां से, कोई भी एक अव्यक्त वाणी नहीं है, वो एक एक पैराग्राफ यहां वहां से लिया हुआ है, और उस एक एक पैराग्राफ में भी इधर उधर से लिया हुआ है, इसके लिए डेट बताना बहुत ही मुश्किल है, वो कि मुरली की डेट कौन सी थी, इसलिए थोड़ी थोड़ी चीजें उसमें रिपीट हुई है, एक फ्लो नहीं है उसमें, वही वही चीज रिपीट हुई है। तो उसमें 6 बातें हैं उस मुरली में। सबसे पहली पॉइंट है अंतवाहक स्थिति, अंतवाहक स्थिति, शक्तिशाली स्थिति, पावरफुल स्थिति, फरिश्ता स्वरूप, उड़ती कला, संसार की हालत बहुत नाजुक होनी है, इसके लिए तुम्हें क्या करना है, नहीं तुम्हें क्या करना है, फरिश्ता रूप धारण कर चढ़ती कला से विश्व की आत्माओं को जो जिसको चाहिए वो देना है। क्या क्या चाहिए आत्माओं को आशीष भाई, क्या क्या देना है आत्माओं को, शांति, खुशी और संतुष्टता। जो जे वांछिल तोते लाहो प्राणिजात, जिसे जो चाहिए वो उसे देना, तृप्त करना आत्माओं को, ताकि वो क्या कहे फिर, शक्ति आ गई, उनको अनुभव हो कि शक्तिशाली कोई आया था और उनको जो चाहिए था वो मुझको मिल गया, क्योंकि आत्मा तृप्त है, इतनी भयंकर अतृप्तता है कि खोजती है, खोजती है और भागती है और दौड़ती है, परंतु आत्मा को वो नहीं मिल रहा है जो उसे चाहिए, सब कुछ है परंतु अतृप्त है। माउंट अबू में जो मार्केट में बीच में एक बहुत बड़ी दुकान है, उसके जो मालिक है, यहां माउंट में वो बीच में एक दुकान है ना किराना की, हाँ नहीं वो जो बीच का है चौराहा, तो उनका जो बेटा है अस्पताल में भर्ती था, फिर उसने शरीर छोड़ा, एक ही बेटा, इतनी दारू इतनी दारू इतनी दारू दिन रात, वो पिता रोज आके रोते थे, कहते थे मेरे पास जितना पैसा है माउंट में किसी के पास नहीं होगा पर मेरे जैसा दुखी व्यक्ति संसार में नहीं है, मैं क्या करूं इसका, कितना इसको समझाऊं ये समझता ही नहीं, कितनी बार भर्ती किया और बाद में तो अभी कुछ समय एक आध महीने पहले शरीर छोड़ दिया। आत्माएं दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है, और दुख का कारण आंतरिक है, और बाहर की कोई संपदा उसे भर नहीं सकती। संबंधों में कड़वाहट, व्यवसाय में अतृप्ति, घर में कलह, क्लेश, द्वंद, आंतरिक द्वंद, संसार में लगभग 1/3 ऐसे लोग होंगे, 1/3 जिनको रातों में नींद नहीं आती, इनसोम्निया, या फिर वहां पर दवाई खाकर उनको सोना पड़ता है। कुछ कुछ देशों में अगर कोई दवाई नहीं खाए तो लोगों को आश्चर्य होता है, तुमको वैसे ही नींद आती है, कोई विधि, विधि क्या है, तुमको नींद कैसे आती, किसी किसान से किसी अमेरिका के व्यक्ति ने पूछा तो तुमको नींद आ जाती है, कहते हाँ कैसे आती है, वो कहते कुछ नहीं, बिस्तर पर जैसे ही सोता हूं तो नींद आ जाती है, तकिया पे सिर रखते ही बॉडी हेड टचेस द पिलो एंड स्लीप टचेस द माइंड, इतना आसान है, और वहां के लोगों को नींद ही नहीं आती है, अनिद्रा के शिकार है। और अनिद्रा सबसे बड़ी सजा है संसार की। चीन जैसे देशों में एक सजा जो उनको दी जाती थी कैदियों को, वो अनिद्रा की। मार देना किसी को बहुत छोटी सजा है, पर उसको नींद ही नहीं करने देना, ये सबसे बड़ी सजा है। उसको सताया जाता था, वो सारे लोग अमेरिका के जो रशिया में रूस में कैदी बने थे, उनको ढोल में डालकर ऊपर से पीटते गए ताकि वो सोए नहीं। पूरी 10-15 दिन ऐसा करते रहो तो वो उनकी पूरी याददाश्त खो जाती है। बाद निकले बाहर तो उनको नए प्रिंसिपल कम्युनिज्म के सिखाए गए और वो कम्युनिस्ट बन गए, जो रशिया चाहती थी। सारा तुम्हारा सब कुछ भूल जाता है, सारी तुम्हारी किसकी कृष्ण भक्ति होगी ना, निकलकर कहेंगे कौन था कृष्ण, सब भूल जाता है व्यक्ति। 15 दिन नींद नहीं करने दो उसको, दिन रात ढोल पीटते रहो, अंदर डाल दो ढोल के अंदर कुछ भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि नींद न कर देना सबसे बड़ी सजा है संसार में। तो कुछ देशों ने तो अपनी फिलोसफी, अपनी टेक्निक ही ये कही थी, सजा देना मतलब कैदी जो थे जंग के कैदी, उनको यही सजा देने की, नींद ही नहीं करने देने का, आवाज दिन रात आवाज करते रहो, तो उनका दिमाग खराब हो जाता है, सब भूल जाते हैं अपनी निष्ठा अपने देश के प्रति, और इधर के सैनिक बना देते हैं। फिर जब निकालते हैं बाहर तो उनको नए सिद्धांत सिखाए जाते हैं तो बहुत खतरनाक चीज है। और आज जैसे कहा, आधा संसार नींद की गोलियां खाकर सोता है, नींद ही नहीं आती है। कारण पूछो, कोई खास कारण नहीं है, कोई टेंशन, कुछ भी टेंशन नहीं है, उनमें से कई ऐसे है, फिर भी नींद नहीं आती, बस रात भर ऊपर देखते रहो छत की तरफ, करवटे बदलते रहो, कोई खास कारण नहीं है। फिर 3 बजते 4 बजते एक आध घंटा नींद आती है, दिन में बिल्कुल नहीं आती, ऐसी दिनचर्या चालू है आत्माओं की, ये संसार है। मुंबई में जाओ देखो कैसे भाग रहे हैं दादर स्टेशन पर लोग, खड़े रहो वहां पर, उस ट्रेन में जाओ विरार वाली, कैसे पागल है लोग, कहां मन में शांति है। कुछ कुछ उसमें से लोकल में बैठ के भजन कीर्तन करते करते जाते हैं नौकरी में, पर क्या वो भजन कीर्तन उनके अशांत मन को शांत कर सकता है, कितनी अतृप्ति है। तो संसार दुखी है, क्या उनको हम भाषण देंगे बताएंगे तुम आत्मा हो ये परमात्मा है, सुनने को तैयार है? अगर सुन भी लिया तो पावर है, शक्ति है, या धारण कर सकेंगी? समझ भी लिया बुद्धि ने, क्या धारण कर सकेगी? शायद नहीं। इसलिए सबसे बड़ी सेवा एक ही स्थान पर बैठ जाना और सकाश फरिश्ता स्वरूप धारण करो, अंतवाहक शरीर धारण करो, लाइट का शरीर धारण करो, उड़ती कला में जाओ, वहां पहुंच जाओ जहां आत्माओं का आवश्यकता है, सुख दो, शांति दो, खुशी दो, संतुष्टता दो, वाइब्रेशंस फैलाओ, ये सेवा आवश्यक है, क्योंकि हालात नाजुक होनी है। अभी जो अशांति है इससे कई गुना और अशांति बढ़नी है, बेचैनी होनी है, बहुत ज्यादा बेचैनी, जहां तहां क्राइम्स 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 चल रहे हैं संसार, अपराध। तो सबसे पहली पॉइंट है अंतवाहक शरीर, अंतवाहक स्थिति, अंतिम स्थिति, इस स्थिति से सेवा करनी। दूसरी पॉइंट है लाइट हाउस, जैसे कहा ना, ये अलग अलग मुरलियों से लिया हुआ है। यहां पर बाबा ने किसका उदाहरण दिया गया, ब्रह्मा बाबा का। जब भी कोई लहर की स्थिति होती थी, डिस्टर्बेंस होता था, ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, रात रात जाग कर, 1968 विश्व किशोर भाऊ मुंबई में थे, बाबा ने रात रात जाग कर सकाश दी। वो पहली बार सकाश शब्द का प्रयोग यज्ञ में हुआ 1968 में। क्या कर रहे थे, तो बाप बच्चे को सकाश दे रहे थे। तो लाइट हाउस, लाइट हाउस बनकर आत्माओं को सकाश देना, रात रात पर जाकर। बाबा कह रहे तुम पुण्य आत्मा हो, हे पूज्य आत्मा हो, हे देव आत्मा हो, विश्व का कल्याण करो, टाइम निकालो, प्रोग्राम फिक्स करो, और ये काम करो, क्योंकि हालात बहुत बिगड़ने हैं, दुख बढ़ने वाला है, दुखों के पहाड़ गिरने वाले हैं। जितनी अशांति अब है उससे 10 गुना अशांति होनी है संसार में। इसके लिए हमारा कर्तव्य स्पीच का कम कम होते जाएगा, भाषण का, और ज्यादा से ज्यादा एक जगह बैठकर विश्व की पालना करनी है, संसार की पालना करनी है। तो सेकंड पॉइंट है लाइट हाउस। तीसरा पॉइंट है बेहद। बेहद में स्थित होकर सकाश दो। तुम क्या हो? तना हो। इसके लिए तुमको क्या करना है? बेहद विश्व को सकाश देनी है। यहां पे फिर से बाबा का उदाहरण दिया, एक स्थान पर बैठकर ही बाबा ने सकाश दी। तुम भी एक ही स्थान पर बैठ जाओ और सकाश दो। अमेरिका का एक व्यक्ति हिमालय पर गया, उसने देखा एक सन्यासी कितनी तपस्या कर रहा है, दिन रात ऑब्जर्व किया उसको उसने, और फिर कहा आप जैसे व्यक्ति अमेरिका में आओ तो बहुत सेवा होगी, क्योंकि यह संदेश की वहां बहुत जरूरत है, मेडिटेशन सिखाओ, आर्ट ऑफ मेडिटेशन। तो वो कहता है कि मैं यहां बैठकर अमेरिका की जितनी सेवा कर रहा हूं ना, वहां आकर नहीं कर पाऊंगा, यहां बैठकर ही मैं तुम्हारे पूरे अमेरिका को सकाश दे, सकाश तो नहीं, सेवा कर रहा हूं, वाइब्रेशंस, टेलीपैथी, टेलीपैथिक सर्विस इज द ग्रेटेस्ट सर्विस। तीन उदाहरण है। सबसे पहले डॉक्टर इमोटो, जो सबको पता है, हंड्रेड्स ऑफ हजारों उसने प्रयोग किए पानी पर, पानी पर प्रयोग किए, लिखा पानी के ग्लास में प्रेम, कहीं घृणा, फिर दूसरे दिन चेक किया किस तरह के डिजाइन बने, और शरीर में 70% से ज्यादा तो पानी है। हम ये प्रयोग अपने शरीर पर कर सकते हैं, सिर दर्द हो रहा है, सकाश। दादी जानकी कहती है मैं रोज 5 मिनट अपने शरीर को सकाश देती। अपने ही शरीर को सकाश देना है, प्रकृति को सकाश, शरीर को सकाश, मुझ आत्मा से प्यूरिटी की हीलिंग एनर्जी पूरे मस्तिष्क में, पूरे शरीर में, अंग अंग में जा रही है, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है। फरिश्ते के शरीर में व्याधि नहीं होती, मुरली में कहा ना, तो मैं मुझ आत्मा से लाइट का शरीर है, सकाश जा रही है, वाइब्रेशंस, वो वाइब्रेशंस सेल के अंदर होने वाले मेटाबॉलिज्म को चेंज करेंगे, वो वाइब्रेशंस अंदर की जो केमिकल बायोकेमिकल प्रोसेसेस चल रही है उनको चेंज करेंगे। और उनको चेंज करने में दवाइयां समर्थ नहीं है, वाइब्रेशंस विल चेंज। वो वाइब्रेशंस वहां जाएंगे, और जितना जिसने अपने शरीर के प्रति निगेटिविटी भरी है उसका शरीर उतना ज्यादा सफर करता है। जिसके शरीर में, मन में जितने मेंटल ब्लॉकेजेस है, डिस्टर्बेंस है, घृणा है, नफरत है, निगेटिविटी है आत्माओं के प्रति, उतना ही उसका शरीर सफर करता है, क्योंकि मेंटल ब्लॉक है अंदर। इसके लिए सबसे बड़ी हीलिंग पावर प्यूरिटी में है, हीलिंग एनर्जी पॉजिटिविटी में है, उस हीलिंग एनर्जी से ही शरीर को ठीक करना है। ये रेकी क्या है? हीलिंग एनर्जी लेना। रेकी हीलर होता है, मास्टर। वो क्या करता है? माध्यम बनता है कॉस्मिक एनर्जी, खुद को अंदर धारण करके सामने वाले को हील करने का। नो टच थेरेपी है, ड्रगलेस थेरेपी इज द रियल थेरेपी इन द वर्ल्ड। ये जो दवाइयां, इधर की दवाई, उधर दवाई, इधर दवाई, उधर दवाई, इधर से दवाई, उधर से दवाई, अभी ये नई नई दवाई आई है, ये बहुत अच्छी दवाई है, और कुछ दिनों के बाद वो अच्छी नहीं है, पता चला रिसर्च से वो बिल्कुल खराब है, वो तो अभी बैन हो गई है, और जब आई थी आहा, उसका क्या था, बाप रे, हर दवाई ऐसी होती है। तो ड्रगलेस थेरेपी, प्यूरिटी इज द ड्रगलेस थेरेपी, पॉजिटिविटी इज द ड्रगलेस थेरेपी। वो उससे आत्मा के जो मेंटल ब्लॉकेजेस है सबकॉन्शियस लेवल पर, जब सबकॉन्शियस क्लीन हो जाएगा तो शरीर की बीमारी अपने आप विदा हो जाएगी। वो सारी बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं मिल रहा है, वो सारी बीमारियां कहीं ना कहीं व्यक्ति ने खुद तैयार की है, आह्वान किया है बीमारियों का, आओ। और वो घर करके बैठी है और वो उलझ रहा है, दवाइयां, ये दवाई, वो दवाई, ये पैथी, वो पैथी, और कहीं ना कोई आराम नहीं कहीं से। तो तीसरा बताया बेहद, तुम तना हो, बेहद में सकाश दो तो बेहद का वैराग भी आएगा, पर्दा खुलेगा। बाबा ने कहा अंदर का पर्दा खुलेगा कल्याण का। विघ्न को हटा दो, मेंटल ऑब्स्टेकल्स को हटाने हैं। सारे विघ्न हमारे अंदर है, बाहर से कोई विघ्न नहीं है। हमको लगता है ये व्यक्ति है टांग अड़ाता है, ये मेरे बारे में बहुत गर्व गर्व बोलता है, ये कमेंट करता है, ये धोखा देता है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, जो कर रहा है मैं ही कर रहा हूं। तो तीसरी पॉइंट है बेहद। चौथी पॉइंट है देना है देना है देना है देना है। लेना नहीं है सॉल्वेशन, देना है। हालात और खराब होनी है तो देने का संकल्प। क्या देना है? वाइब्रेशंस। और इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं है, वाइब्रेशंस देने की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, एकांतवासी और खजानों के इकोनॉमी। एकांतवासी, जो कल भी परसों भी रिवाइज कराई थी कि मनसा के साथ शुभ भावना, शुभ कामना, ये सारी चीजें भी चाहिए। मन का मौन, ट्रैफिक कंट्रोल, ये सारी चीजें भी चाहिए। तो एकांतवासी हो जाना, बीच बीच में एकांत में चले जाना, अंडरग्राउंड। दिन में भी कई बार एकांतवासी हो जाना, अंडरग्राउंड टू रिचार्ज। नहीं तो मोबाइल दिन भर यूज कर रहे, बैटरी डिस्चार्ज होनी है, उसको बीच बीच में चार्जिंग चाहिए। सबसे डिटैच हो जाओ, किसी से कोई लेना देना नहीं। मैं किसी यहां पे भी नहीं हूं, वहां पे भी नहीं हूं, ना इधर ना उधर, सबसे अलग एकांकी। तो फिफ्थ एंड लास्ट सिक्स्थ, टावर पर बैठ के 4 घंटा सकाश दो। साधनों का बाबा ने याद किया, साइंस के जो साधन है वो भी दुख देते हैं। अविनाशी सुख की अनुभूति जिसको खुद ही नहीं है वो दूसरों को क्या कराएंगे? तो प्रभु याद के वाइब्रेशंस फैलाने हैं संसार में। तो ये सारी जो सेवाएं, जो पॉइंट्स बताई, इसमें अभी वो प्रश्नों की तरफ आते हैं। सकाश क्या है? परिभाषा, प्योर एंड पॉजिटिव एनर्जी इज सकाश। प्योर सकारात्मक ऊर्जा जो है वो है सकाश। दूसरा प्रश्न था कौन दे सकता है सकाश? जिसके पास शुभ भावना है, शुभ कामना है। और कौन दे सकता है? जो अशरीरी होने का अभ्यास करते हैं, जो इस संसार से विरागी है, जो अटैच नहीं है। क्योंकि अगर कई सारी माताएं आती है, कहती है हमारे बेटे को ये, हमारे बेटे को उसको सकाश दो, गलत संग में चला गया है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ड्रग्स लेने लगा है, और अटैच है इतनी, उनकी सकाश नहीं पहुंच सकती। जिसको सकाश देनी है उससे हम डिटैच चाहिए। बिना बेहद के वैराग्य के सकाश देने की सेवा नहीं हो सकती। जिस घर को सकाश देना है उस घर से हम अलग चाहिए, मेंटली इमोशनली डिटैच्ड। तो कौन दे सकता है? जो डिटैच है। कौन दे सकता है? जो वैरागी। कौन दे सकता है? जो शुभ भावना से भरा। कौन दे सकता है? जो अशरीरीपन का बार बार अभ्यास करता है, रूहानी ड्रिल का अभ्यास करता है, समान का अभ्यास करता है, ज्ञान का चिंतन करता है। बाबा ने कहा ना, नीचे जो भी होना है होने दो, तुम साक्षी होकर ऊपर से खेल देखते रहो, ऊपर से देखते रहना है ये खेल यहां पर। ये डिटैच होना ही सबसे बड़ी चीज है। साक्षी स्थिति अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था है। उस हम इस ड्रामा में हम एक्टर है, पर हम ऑडियंस भी है। एक चीज विवेकानंद ने लिखी है कि आई फील दैट टू रिमेन साक्षी इज द ग्रेटेस्ट स्टेज इन द वर्ल्ड। और उन्होंने साक्षी स्थिति की ऐसी प्रैक्टिस की कि जो भी उनके साथ हो रहा है दिनचर्या में, वो लेटर लिखते थे अपने दोस्तों को, और उसमें ऐसा लिखते थे आज मैंने यहां भाषण दिया, फिर आज लोगों ने मेरी बहुत तारीफ की, फिर आज ऐसा हुआ, जैसे मैं नहीं लिख रहा हूं, कोई दूसरा ही लिख रहा है। और उसमें एक साक्षी भाव है, कंटिन्यूअस परसिस्टेंट साक्षी भाव है। ये लिखना जो है ना, साक्षी बनाता है व्यक्ति को। ऐसे लिखो जैसे कि वो मैं नहीं हूं, मतलब ये नहीं लिखो आए, उसमें लिखो अपना नाम डाल दो उसमें कि ये व्यक्ति आज ठीक था। आज थर्ड पर्सन में अपने से बात करना, ये साक्षी भाव को क्रिएट करेगा। जैसे किसी का नाम कमलेश है तो लिखेगा आज कमलेश सुबह इतने बजे उठा, आज कमलेश भाई को सुबह ऐसा ऐसा लगा, आज कमलेश का ऐसा झगड़ा हो गया, फिर आज कमलेश ठीक था, आज मेरी इतनी तारीफ हुई, आज पेट में मेरा आज टॉपिक था पर मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ या मैंने कराया ब्रैकेट में और फिर मैं वहां से वहां चला गया। साक्षी होके डायरी लिखना, जैसे थर्ड पर्सन में लिखा जा रहा है। हाँ, पर कोई कोई ऐसी आत्माएं मैंने देखी है जो ऐसी बोलती है, भरा ही आर्टिफिशियल लगता है। एक बहन ने फोन किया और वो कह रही थी, नाम जो भी था, वो बहन को ठीक नहीं लग रहा है, आप उस बहन का। मैं बोला कौन सी, वो खुद ही के लिए बोल रही थी थर्ड पर्सन में पर वो जो बोल रही है इतना कृत्रिम और आर्टिफिशियल दिख रहा था, जैसे बनाया है एक्स्ट्रा थोड़ा सा। तो वो नहीं, यहां लिखने की बात कर रहे हैं। तो नीचे जो भी हो रहा है साक्षी होना, तो सकाश कौन दे सकता, ये दे सकता। अब किसको सकाश देनी है, पहले स्वयं को शरीर को, पांच तत्वों को, और किसको सकाश देनी है, संसार की आत्माओं को, भक्तों को, सन्यासियों को, ब्राह्मण परिवार में भी 14 पार्ट है, 6 ऊपर है बाकी नीचे। वो लिस्ट बनाई थी ना एक बार, मधुबन, ज्ञान सरोवर, म्यूजियम, पीस पार्क, हॉस्पिटल, मधुबन, आबू निवासी, ये 6 ऊपर, और नीचे शांतिवन, संगम भवन, ट्रॉमा, शिवमनी, नर्सिंग स्कूल एंड कॉलेज, उसके बाद में तपोवन, उसके बाद में वो नदी और पार्क, और उसके बाद में पार्क सारे, ठीक है, उसके बाद में आबू रोड निवासी, उसके बाद में बीके कॉलोनी वाले, वहां से वहां तक के वो जो बीच में है वो, ये सब मिला के 13, और लास्ट बीके सेंटर्स। ये काम तो रोज करना है सेवा केंद्र का, हर स्थान पर जाकर अनेक रूप प्रकट करना, और वहां पर सभी को संदली पर बैठकर सूक्ष्म में, वो जो सेवा केंद्र, एक एक सेवा केंद्र में सामने बहनें बैठी है, पीछे पूरे स्टूडेंट्स हैं, और उनको निर्विघ्न बनने के वाइब्रेशंस, प्यूरिटी के वाइब्रेशंस। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं, एक एक सेवा केंद्र के विघ्न नष्ट हो रहे, ऐसी सकाश देनी है। संपूर्ण यज्ञ निर्विघ्न हो रहा है, तो ये किसको सकाश देनी है, ये हुआ। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, कैसे कहां बैठकर सकाश देनी है। 6 या 7 जगह है। एक तो इसी शरीर में बैठ के सकाश दो, दूसरा सूक्ष्म वतन में बैठ के सकाश दो, तीसरा परमधाम में बैठ के सकाश दो, चौथा फरिश्ता रूप में जा जाकर सकाश दो जबरदस्ती। वो जो मानते नहीं है बिल्कुल, उनके पास जा जाकर पिचकारी सकाश की ले जाओ और दो उनको। तो फरिश्ते रूप में सकाश दो, फिर है सृष्टि चक्र के ऊपर बैठकर सकाश दो, फिर है वृक्ष, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर सकाश दो, और कभी गोले को हाथ में ले लो। तो ये अलग अलग जगह पर अलग अलग विधि से सका, कभी पहाड़ी पर जाओ, कभी परिक्रमा करो, कभी पांच तत्वों को सकाश, कभी आकाश में जाओ, आकाश में भी सब कुछ, सूरज, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्र, उनको सकाश, पंछी जो उड़ रहे, एरोप्लेन जो जा रहे, फिर धरती को सकाश, जल को सकाश, अग्नि को सकाश, पांच खंडों को सकाश, पांच तत्वों को सकाश, ये सारे होलिस्टिक। हाँ, पर वो ये भी करना है, और वो फिर धीरे धीरे टेलर्ड, एक एक व्यक्ति को सकाश, फिर जो जिनको दुख दिया है, जिनसे दुख मिला है, माफ करना, माफी मांगना, ये काम करना, धन्यवाद देना, और एक चीज करनी है, जिनको ये सब कुछ भी नहीं है, जैसे कल कहानी जो बताई थी ना कि किसके अंदर घृणा नहीं है, तो वो बूढ़ा व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है कि मेरे अंदर कोई घृणा भाव नहीं है। कैसे घृणा को विजय प्राप्त की, क्योंकि जो जो मेरे दुश्मन थे सब मर गए, अब किससे घृणा करूं 100 साल का बूढ़ा हो गया, पूरे चर्च में एक ही व्यक्ति था जो कि विजय, घृणा पर जिसने विजय पाई थी। तो कहता है जो जो मुझे सताने वाले थे, जिन्होंने मुझे परेशान किया, जो मेरे दुश्मन थे सब मर गए, किससे घृणा करूं। तो अभी क्या करना है, वो नहीं अभी क्या करना है, जिनसे भविष्य में हिसाब किताब बनने वाले हैं उनको पहले ही सकाश। जैसे आज सारे दिन भर कोई आत्मा आने वाली है अचानक, तो उसको पहले से ही सकाश दे दो। ये है प्रिपेरेडनेस, स्पिरिचुअल प्रोफाइल, पहले से ही सकाश दे रहे कि जिनके हिसाब बनने हैं, अभी बने नहीं है, अभी आई नहीं है वो आत्माएं, अभी चालू ही नहीं हुए है। पर संडे की मुरली में कहा ना, अभी अभी दोस्त, अभी अभी स्वार्थवश दुश्मन, अभी अभी जो बाजू वाला है वो कभी भी दुश्मन बन सकता है, अभी अभी जो सामने है वो अभी भी दुश्मन बन सकता है, तो उसको पहले ही सकाज दे दो हल्दर भाई, ठीक है ना। और मुख्य रूप से अपने डिपार्टमेंट वालों को ज्यादा सकाज दो वो जरूरी है ठीक है ना, क्योंकि दूर तो वहां भूकंप आया, यहां पर बैठ के जो भूकंप में जो गए उनको सब सकाश, इधर सकाश उधर सकाश, और ओम शांति काम पूरा हुआ। पर जो बाजू वाला है उसका क्या, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब तो वही है जो घर में है, पति पत्नी बच्चे वही छूट रहे, वो छोड़कर बाकी सबको सकाश देना बहुत आसान है। आ? पर ये मुरली में ये भी कहा है कि बेहद में सकाश दो तो आसपास वालों को ऑटोमेटिक मिल जाएगी, तो इसके लिए लक्ष्य ये यहां वालों को ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, बेहद में दो अपने आप मिलेगी, क्योंकि इनको देने में उनमें फंसने की बहुत ज्यादा चांसेस है। हाँ पॉजिटिव रखना है पर बेहद में ज्यादा जाना है, तो बेहद की सकाश। तो ये हो गया किसको सकाश देनी है, फिर उसके बाद में उनको सकाश दे दी, पता कैसे चले हमने दे दी, मिलेगी नहीं, यहां से सेंड कर दिया मैसेज रिसीव्ड और नॉट, या मैसेज आ रहा है रिसेंट तो आता नहीं है इसमें, कुछ इसमें आता है रिसेंट, उसमें नहीं आता है। हाँ चली जाएगी, डायरेक्ट अनुभव हो जाए आत्मा को गहरा मौन का, एकांत का, शांति का, और हमको ये किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं कि सकाश गई कि नहीं, उसको भी पूछने की जरूरत नहीं जिसको गई, वो गई हमने भेजी ना तो गई, जितनी हमारी एकाग्रता कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड होगा उतनी सकाश डिलीवर्ड। ये हो गया, फिर उसके बाद में कठिनाई क्या है सकाश देने में नहीं अच्छा है, पता चल भी गया तो सिद्धि स्वरूप शक्तिशाली आत्माओं से शक्तिशाली बाप प्रत्यक्ष होगा। अच्छा सकाश देने में कठिनाई है, डिफिकल्टीज, कॉन्सेंट्रेशन चाहिए सकाश में, ऐसे ही थोड़ी सकाश दी जा सकती है, स्ट्रांग कॉन्सेंट्रेशन चाहिए और अच्छे पावरफुल संकल्प चाहिए, सारे दिन भर की स्थिति दिनचर्या पावरफुल चाहिए, अमृत वेला, ऐसा नहीं कि आज अमृत वेला हो रहा है कल नहीं हो रहा है, एक दिन भी मिस ना हो, एक दिन भी नहीं, जैसे श्वास लेते हो वैसे अमृत वेला है, एक दिन भी नहीं, एक दिन भी बिना सकाश के ना जाए संसार को। जिस दिन हम सकाश नहीं दे रहे संसार का कितना नुकसान कर रहे, कितना बड़ा अपराध है ये, जिस दिन कम सकाश दी अपराध है वो बहुत बड़ा। और क्या क्या बीमार क्यों पड़ा, व्यक्ति बीमार तब पड़ता है जब प्रकृति के विरुद्ध जाता है, जरूर कहीं ना कहीं सूक्ष्म में प्रकृति के विरुद्ध गया है, जरूर सूक्ष्म में कुछ ना कुछ शरीर का ध्यान नहीं रखा है, जरूर कुछ ना कुछ अपराध किया है, प्राकृतिक अपराध किया है, हिसाब किताब भी तो है हिसाब किताब भी तो है। पर ये सब हम नहीं सोचना है कि ये दूसरों, हमेशा ये सोचना है, हमेशा ये सोचना है कि जो हो रहा है मेरे साथ मेरी वजह से हो रहा है, ये नहीं सोचना है कि ये किसी और की वजह से हो रहा है, चाहे वो होने दो जो हो रहा है, चलो किसी को कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, पर ये सोचो कि ये मैंने ही आह्वान किया है, और हुआ तो अच्छा ही है, आए तो उसमें भी करना ना, उसमें भी तो नया मौका मिला है, अच्छा कहा ना इसमें तबीयत कोई ध्यान नहीं रखती है, तबीयत का कोई मायना नहीं है, तो कैसी भी तबीयत हो सकाश दे सकते हो, प्रैक्टिस चाहिए, पहले से प्रैक्टिस करते रहो और सकाश देते रहो। अच्छा अगला प्रश्न, डिफिकल्टीज में और क्या क्या, अशरीरी बनना पड़ता है, बिना अशरीर बने थोड़ी ना पकड़ देख सकते हैं, वैराग चाहिए, धधकता हुआ अटैच है, ये मेरा तू मेरी, कहां से सकाश जाएगी, कहीं सकाश नहीं जाएगी, ये भी खाऊं वो भी खाऊं, ये भी अच्छा है ये टेस्टी है वो टेस्टी है, जो व्यक्ति के मन में होता है वही घूमता है गोल 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 गोल, जो अंदर होता है ना वही दिखता है उसको बाहर, ऐसा है। एक जर्मन ऑथर ने लिखा है, एक बार वो हमेशा कविता लिखता था, तो जब भी चांद देखता था ना उसकी जो लवर थी प्रेयसी उसकी उसका कंपैरिजन करता था, ये जो चांद है ना तुम्हारे जैसी है, और एक बार जंगल में घुस गया और भटक गया वहां पर, तो तीन दिन से भूखा तो चांद दिखा, पर आज चांद में उसको रोटी दिखाई दे रही है वो कहां गई, वो तो गुम हो गई, हमेशा वो दिखाई देती थी, आज भूखा है तो वो चांद उसको जो गोल चांद जो दिख रहा है ना सफेद सफेद रोटी, कहता है कि ये रोटी भी ऐसी होगी, तो जो तो व्यक्ति देखता हुआ है जो अंदर है, वो व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। और डिफिकल्टीज इन सकाश, व्यर्थ है तो सकाश कहां से जाएगी, निगेटिव है तो सकाश कहां से जाएगी, दिनचर्या व्यवस्थित नहीं है तो सकाश कहां से जाएगी, दिनचर्या एकदम स्ट्रांग चाहिए तो ही सकाश जाएगी। और संकल्प चाहिए सकाश देने का, इच्छा चाहिए सकाश देने की, विश्व कल्याण की भावना चाहिए कि मुझे देना है, मुझे करना है विश्व का कल्याण। ये जो ऊपर का हम जो भी डिपार्टमेंट और ये जो भी संभाल रहे सब ऊपर ऊपर है, पर अंदर से भावना एक ही हो कि सारे जगत का कल्याण करना है, एक व्यक्ति का नहीं खाली। वो जो 10 लोग आ रहे हैं, 15 लोग आ रहे हैं हमारे पास और 20 लोग आ रहे हैं, केवल उनके लिए थोड़ी ना आए हैं हम संसार में। हम जो आए हैं हमारी सेवा अनलिमिटेड है, विश्व संपूर्ण सार्वभौम, ये हमारा लक्ष्य है। माई इंटरेस्ट आर नॉट जस्ट इंडियन बट इंटरनेशनल। मेरे इंटरेस्ट, विवेकानंद ने कहा है, मैं खाली भारत के लिए नहीं आया हूं, खबरदार जो मुझे भारत का समझा दो, आई हैव कम फॉर द वर्ल्ड। सो आई माई इंटरेस्ट आर इंटरनेशनल हो। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। नहीं, ये हो गया पूरा। लेजीनेस ना हो, फुर्त हो, चुस्त हो। कुछ दिन पहले मुरली थी ना, टीचर अर्थात चुस्त, कितने घंटे नींद करे, 6 घंटा नींद करे और 10-10 12-12 सेंटर एक टीचर संभाले, उसको कहेंगे चुस्त टीचर। साकार मुरली थी ना अभी, हाँ 6 घंटा बोला था। तो सकाश में डिफिकल्टीज, सकाश में क्वालिफिकेशन हो गया, सकाश किसको देनी है, सकाश अभी अगला प्रश्न है कब देनी है, कब, वेन, टाइम, कभी भी नहीं। पहले अमृत वेला पावरफुल सकाश, एक नुआ शाम पावरफुल सकाश, और फिर बीच बीच में दिनचर्या में सकाश, ट्रैफिक कंट्रोल में सकाश, और रात को सोते समय सकाश, और रात में अगर आंख खुल जाए तो सकाश देंगे वापस। स्वप्न में भी सकाश, वो स्वप्न में सकाश तब दे सकेंगे जब हमारे इतना अभ्यास हो गया कि स्वप्न में भी वो आए। स्वप्न में तो वो चीजें आती है जो अवचेतन में है, डायरेक्ट वो नहीं आती। अगर मैं सोचूं मुझे ये स्वप्न देखना है, स्वप्न देखना है, तो नहीं होगा। स्वप्न में वो आता है जैसे किसी ने दिन में ऐसी कुछ बात कह दी जो चोट लग गई यहां एकदम दिल में, चोट, खून भी निकला और दिखाया नहीं सबके सामने लोकलाज के कारण, और फिर रात में सोते हैं तो वो व्यक्ति दिखाई देता है चोट देते हुए। स्वप्न में वो चीजें आती है जो अंदर है। तो कब देनी है, ये साइन पे देनी है, कब देनी है, कहां देनी है, कहां देनी है, कौन कौन से स्थानों पर बैठकर देनी है। मधुबन में बैठ के दो, संगठन में बैठ के दो, अकेले में इंडिविजुअल सकाश, कलेक्टिव सकाश, कमरे में बैठ के सकाश, अपने कमरे को सकाश, और एक चीज जो जहां सोते हैं ना, खटिया को सकाश बहुत जरूरी है। नींद ठीक से आए, सपने ना आए और विकार के सपने ना आए, वहां पर पवित्र और नींद रिफ्रेशिंग हो। ऐसा नहीं, कई लोग आते हैं ना ओपीडी में, हमारे नींद ही नहीं होती, उठते हैं तो थकान, 8 घंटा सोए, उठे और उठते ही थकान, शरीर टूटता है, कुछ कुछ होता है, अच्छा नहीं लगता है, नींद करने की इच्छा करती है, इच्छा होती है, ये सब होता है। तो रिफ्रेशिंग साउंड स्लीप के लिए बेड को सकाश और अपने कमरे को सकाश, ये भक्तों को सकाश, मंदिरों को सकाश, गुरुद्वारों को सकाश, हॉस्पिटल को सकाश, गरीबों को सकाश, मरीजों को सकाश, डॉक्टरों को सकाश, ABCD। ए आत्मा को सकाश, बी उसके शरीर को सकाश, मतलब पेशेंट्स की, डॉक्टर में, हॉस्पिटल में ABCD है। ए मतलब आत्मा, बी मतलब उसका बॉडी, सी मतलब उसके रिलेटिव्स कंपनी, और डी मतलब डॉक्टर। तो कोई भी हॉस्पिटल को देखो तो ABCD याद करना, फटाफट फटाफट सकाश। ट्रैफिक के बीच में फंस गए तो आसपास के लोगों को सकाश, हॉस्पिटल से जा रहे, बागलखाने से जा रहे, सबको सकाश, तो सभी को सकाश। तो किन किन को सकाश, और कोई प्रश्न, और कौन सा प्रश्न था, माध्यम क्या है सकाश देने का, नुकसान मन के मौन, माध्यम मींस मन का मौन के द्वारा सकाश, वाइब्रेशंस के द्वारा सकाश दी जाती है, शुभ भावना की जाए, इनविजिबल रेज, लेजर रेज की तरह आत्मा को पेनेट्रेट करे। विधि, आत्माओं को इमर्ज करना, आत्माओं को देखना, आत्माओं से बात करना, उनसे हाथ मिलाना, उनके सिर पर हाथ रखना, उन्हें तिलक देना, उन्हें परमात्मा प्रेम से भर देना, आदिवासियों को सकाश, वेश्याओं को सकाश, आत्माओं में परमात्मा प्रेम का झंडा गाड़ के आ जाना रातों रात, विकर्मों को भी विनाश करना, पहले अपने विकर्म और फिर दूसरों के विकर्म विनाश करना। हाँ, बीमारियों को भी, मतलब उसके शरीर को थोड़ा सा आत्मा उससे डिटैच रहे, उस बीमारी का उस पर असर ना हो, सहन शक्ति बढ़े। तो शक्तियां भरनी है, ज्ञान गुण सब कुछ, ये सारी चीजें करनी है। सकाश बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें ये सारी चीजें ऊपर चिंतन करना है, कब देना है, कहां देना है, क्यों देना है, किसको क्यों देना है, क्योंकि दुख ही है, क्योंकि बाबा ने कहा है, क्योंकि आत्माएं तड़प रही है, शक्ति नहीं है, कील ठुका हुआ वहां पर और अंधेरा है, और हम पूर्वज है, हमारा कर्तव्य एंसेस्टर्स है, हम हमारे पास स्टॉक हो तो ही हम दे सकते हैं, और हमारे पास है, हम भरपूर है, संपन्न आत्मा है, आत्माएं विपन्न है, आत्माएं गरीब है, आध्यात्मिक दरिद्रता है, पाप है संसार में, सबसे बड़ा पुण्य है याद, सबसे बड़ा पाप है विस्मृति, एक मुरली में बाबा ने कहा है, सबसे बड़ा पुण्य है याद और सबसे बड़ा पाप है विस्मृति, क्योंकि आत्मा विस्मृत है, पाप विकर्म कुकर्म, किसी भी जगह जाओ संसार में कितनी अशांति है एक एक मन में, कहीं पर भी शांति नहीं, इसके लिए सकाश। और भटकती हुई आत्माएं, कल याद किया था पापा ने घोस्ट, तो उनको भी सकाश, तो कहां देना, कब देना, क्यों देना, किस लिए देना, किस विधि से देना, कहां कहां देना, ये सारे चिंतनीय बिंदु है और ये सबसे बड़ी सेवा है। ओम शांति।